आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह खुश होंगे, मस्त होंगे और थोड़े बहुत व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जब आप खुश हैं, मस्त हैं तो व्यस्त हैं, और अगर आप व्यस्त हैं तभी मस्त हैं, खुश हैं। या मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि व्यस्त होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि आप अस्त व्यस्त रहें, मतलब कब क्या करना है, कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको ना रहे तो ये हम व्यस्तता इसे नहीं कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त सावन कुमार, और आप सबों का मैं आप यहाँ पे स्वागत करता हूँ। कक्षा 9 के किताब अर्थशास्त्र का अध्याय, आखिरी अध्याय है ये, चौथा, उसके दूसरे भाग में हम लोग मौजूद हैं। इससे पहले लगातार हमने 3 अध्यायों में अर्थव्यवस्था की कुछ जटिलताओं के बारे में चर्चा की थी। देखिए, अर्थशास्त्र जो है एक जटिल सिद्धांत है ना, है तो हर विषय जटिल ही होता है, मगर अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी बात यह होती है कि बाजार हमेशा बदलते रहते हैं। बदलती तो राजनीति भी है, भूगोल नहीं बदलता, मगर दशाएँ बदलती रहती हैं। मगर अर्थशास्त्र में ऐसा कुछ होता है कि पहली बार आप इसे सामना करते हैं, थोड़ी जटिलताएँ इसमें बढ़ सी जाती हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इतना समझिए कि अर्थशास्त्र बहुत रोचक विषय है। और मैं आपसे यहाँ पे एक बहुत महान व्यक्ति का वाक्य कहना चाहूँगा कि अर्थनीति राजनीति को प्रभावित करती है, दिशा तय करती है। इकोनॉमिक्स सेट डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, और फिर पॉलिटिक्स जो होती है वो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं और उस पर इंक्लूड भी रहते हैं। आइए मैं आपको सीधे आपके टॉपिक पे लिए चलता हूँ। खाद्य असुरक्षा, खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों को या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको अभी देना चाहूँगा, और ये सौभाग्य है कि अभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, सरकारें काफ़ी कोशिश कर रही हैं, कई बार ऐसी खबरें आ रही हैं जो हमें विचलित कर देती हैं। कोई बच्ची चली आ रही है, किसी बच्ची की माँ मर चुकी है और वो बच्ची उसे जगाने की कोशिश कर रही है, कितनी सारी तकलीफें हो रही हैं, है ना। यहाँ पे वो प्रवासी मजदूर हैं, अब ये भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके पास खाद्य उपलब्धता नहीं है, जहाँ वे रह रहे हैं उनके पास उतना अनाज नहीं है कि वो जीवन यापन कर सकें, फिर मकान किराया भी है, तो इनकी आय बहुत कम है, ये सामाजिक असुरक्षित है। ऐसे कौन कौन हो गए? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियाँ, क्योंकि देखिए इनके पास पहली बात तो ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन नहीं है तो आप उपजाएंगे कैसे? उपजाएंगे नहीं तो आपको खरीदना पड़ेगा, और अभी क्या हुआ कि आय खरीदेंगे तो आप जब आमदनी होगी कहीं से, आप कुछ काम करेंगे और काम करके आप खरीदेंगे। अब ठीक है, आप खरीद रहे हैं तो चलिए हर मंथ आपका चल रहा है, इतने पैसे नहीं बचते हैं कि आप बचा सके, तो अब मुसीबत का वक्त है, अब तो अनाज मिलना भी मुश्किल है और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो क्या होगा? तब तो आप पीछे चले जाएंगे ना। कुपोषण में सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। दूसरी समस्या कुपोषण की है। आप में से कुछ बच्चे के पिता खेती करते होंगे, या किन्हीं का घर गांव में होगा, तो आप अगर किसी किसान से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जब वो बीज रोपते हैं तो बीज को वो पानी में डाल देते हैं, इससे जो खराब बीज होते हैं बहुत सारे वो ऊपर आ जाते हैं, या फिर विभिन्न तरीके से बीज का उपचार करते हैं, क्योंकि अगर बीज खराब रहा तो फिर बाद में पूरी फसल खराब रहेगी, इसमें कोई दो राय और संदेह नहीं। यहाँ मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि देखिए, बीज महत्वपूर्ण होते हैं, तो कुपोषण, बच्चे ही अगर कुपोषित रहेंगे तो फिर आप उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रही तो आप शिक्षा रेगुलर वे में ग्रहण नहीं कर पाएंगे, फिर आप क्या होगा, परिसंपत्ति नहीं बनेंगे। और समस्या क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उतना पौष्टिक आहार मिल ही नहीं पा रहा है, तो बच्चे कुपोषित का शिकार तो होंगे ही होंगे। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। ये कह रहा है कि खाद्य रूप से असुरक्षित लोग कौन कौन है, तो पहला दिन उन्होंने वहीं बता दिया कि ठीक है जो जनजाति है, जाति है, ये है। दूसरी बात, जो गरीब राज्य हैं उनके पास संसाधन नहीं है उतने, संसाधन नहीं मतलब उद्योग धंधे उतने अच्छे से नहीं है, पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, कृषि पर ज़्यादा लोग निर्भर हैं, फिर कृषि पर भी कम के पास ज़्यादा ज़मीन है। तो अब ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खाद्य सुरक्षा दृष्टि से जो लोग हैं उन्हें बढ़ा रही हैं। मैं चाहूँगा बच्चों की, जब यहाँ पे मैंने कुछ राज्यों के नाम लिए, तो जब आप एक बार फिर से उसको सुने या अपने किताब में देखें और मैप भारत का आप सामने रखें, ताकि आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाएं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। देखिए 11 करोड़, चलिए हटाइए, मान लेते हैं कभी इनकी संख्या सिर्फ 2 करोड़ है, लेकिन फिर भी चिंताजनक है। अब 2 करोड़ महिलाएं और बच्चे हैं, तो मान लें कि ठीक है 1 करोड़ महिला है, 1 करोड़ बच्चे हैं। अब 1 करोड़ महिला फिर से बच्चों को जन्म देगी तो 2 करोड़ हो गए। अब वो 2 करोड़ बच्चे तो बिल्कुल कुपोषित हैं, वो फिर आगे जाएंगे गरीब होंगे। अब वो 2 करोड़ बच्चे 6 करोड़ बच्चों को पैदा करेंगे, तो अब 6 करोड़ फिर से वही हालात होंगे कुपोषित। मान लें कुछ बाहर भी आता तो 5 करोड़ ले लीजिए, फिर 5, 10, 10, 20, देख रहे हैं किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे कोरोना वायरस पड़ता है। इसलिए गरीबी को भी एक अभिशाप माना जाता है और कहीं की गरीबी हर जगह के लिए बिल्कुल खतरा बन जाती है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। देखिए भुखमरी क्या है, मान लें कि खाद्य की दृष्टि से जो असुरक्षित है ना, एक दूसरा मतलब मेरे पास खाना नहीं है, तो खाना नहीं तो मैं क्या करूँगा, कुछ कमाऊँ तो फिर मुझे पैसे मिलेगा, मैं खाना खरीदूँगा। और वो स्थिति ना हुई तो फिर आप जाएंगे, तो फिर आप मर जाएंगे। यही भुखमरी होती है, जब भूख की वजह से आदमी मर जाए। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपने अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। इसे बच्चों आप एक बेहद आसान उदाहरण से समझें कि परीक्षा में अगर आप लिखने के लिए दूसरे पर निर्भर हैं कि ठीक है भैया वो कलम देगा तो मैं लिखूंगा, अपना कलम नहीं है तो क्या है, आप उस पर निर्भर हैं। बिल्कुल कगार पर खड़े अगर कलम नहीं हुई तो, या मान लीजिए ठीक है आपने उदाहरण एक कलम लेके गए हैं और अगर वो कलम ख़राब निकल गई तो फिर तो परीक्षा में आप फेल होने कगार पर हैं। यही स्थिति होती है। कुछ लोग तो सीधे सीधे उसी तरह दूसरों से कलम मांग कर रहे हैं, तो उनके पास तो है ही। अब देखिए यहाँ पर इसका दो समाधान होता है कि ठीक है एक मित्र कहे कोई बात नहीं मैंने लिख लिया है, 10 मिनट है लो, 10 मिनट में तुम जितना लिख सकते हो लिख लो। और एक हो रहा है जब कोई आपको दे ही नहीं रहा है, तो ठीक है मान लें कि 10 मिनट में आप लिखेंगे तो कुछ संभावनाएं हैं कि थोड़ी बहुत आप पास वास कर जाएं, लेकिन अगर आप कुछ ना लिख पाएं बहुत लंबे समय तक तो फिर क्या होगा, आप पास नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से लोगों को जब बहुत दिन तक खाना नहीं मिलेगा या बहुत कम मात्रा में मिलेगा, कलम मिली भी तो रुक रुक के चल रही है, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट खराब आएंगे, वो दीर्घकालिक भुखमरी होती है। अब ये कब होगा, जैसे गरीब लोग हैं तो बहुत कम कमाते हैं, पैसे नहीं हैं इनके पास, तो बहुत घटिया स्तर का खाते हैं तो दीर्घकालिक भुखमरी होगी। कभी कभी मान लें कि किसान है तो उन्होंने फसल उपजाया, काटा, श्रमिक मजदूरों को तब काम मिला, फिर बहुत दिन काम नहीं भी मिला, तो इस तरह से क्या होता है, तो फिर व्यक्ति को पूरे वर्ष में काम नहीं मिलता। जब पूरे वर्ष में काम नहीं मिलेगा तो आय कम होगी, आय कम होगी तो फिर क्या होगा, वो खरीदेगा कम, और जब कम खरीदेगा तो क्या होगा, तो फिर उसकी गुणवत्ता घटेगी या फिर वो बढ़िया चीज़ों को नहीं खरीद पाएगा और खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हो जाएगा। सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। आइए बच्चों, मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि सारणियाँ, चार्ट, बार ग्राफ, क्रियाकलाप, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि काफ़ी कम शब्दों में यह बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। जैसे विंसेंट वॉन गॉग ने कहा था कि एक अच्छी पेंटिंग वो होगी जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और एक अच्छी कहानी वो होगी जो एक पेंटिंग में समा जाए। आइए देखिए ये चार्ट कितनी बड़ी बात कह रहा है। वर्ष बता रहा है ग्रामीण क्षेत्र में 1983 से 2000 दी गई है। उसमें मौसमी, जो आप जानते हैं भुखमरी, जब आपको मान लीजिए काम नहीं मिल रहा है तो उस समय आपकी स्थिति आ गई। दीर्घकालिक, जब लंबे समय तक वो बढ़िया खाना नहीं मिला। तो देखिए 1983 में 16.2 और फिर 18.5 कुल थी, दीर्घकालिक कम थी और मौसमी ज़्यादा थी। 2000 आते आते हमने 2.6 पर इसे ला दिया और कुल मात्र 3.3 पर। शहरी क्षेत्रों में भी आप देखें तो और भी हमने इस पर सुधार किया और बहुत कम स्तर तक ला दिया। यहाँ मैं बच्चों को थोड़ा सा एक टास्क देना चाहूँगा कि आप ये सोचिए कि शहरी क्षेत्रों में इतनी कम भुखमरी क्यों रही। बिल्कुल, चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। देखिए कोई भी सरकार है तो वो पहले ये देखती है कि हमारे देश की समस्याएं क्या क्या हैं, फिर उस हिसाब से हम अपना काम करते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। अब यहाँ पर आप देखिए कि भारत को जब ये लगा कि नहीं नहीं दूसरे देशों से गेहूं चावल क्या मंगाएंगे, है ना, हमारे यहाँ उत्पादन होना चाहिए, हम ज़्यादा उत्पादित करेंगे, तो यहाँ पर फिर उन्होंने अब ज़्यादा उत्पादित आप कैसे करेंगे, ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि पागल वो है जो हर रोज़ एक ही काम करे और सोचे कि रिजल्ट कुछ अलग आ जाए। तो आपको रिजल्ट तो अलग चाहिए, मेथड बदलना पड़ेगा। फिर हरित क्रांति आई और हरित क्रांति से गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि की, जैसा कि आप पिछले जान भी चुके हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि सामानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। देखिए बच्चों, फिर आगे आपको डाटा की आंकड़ेबाजी की गई है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको कह दूँ कि ये डाक टिकट जारी करने का क्या संदर्भ था या फिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। देखिए डाक व्यवस्था पूरे भारत में फैली हुई है और जो भी सरकारी कार्य होते हैं तो अधिकांश वो डाक के माध्यम से ही होते हैं। तो जब डाक टिकट किसी पर जारी किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ पूरा देश जानता है और बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो गेहूं क्रांति से कर दिया तो पूरे देश को पता लगा कि नहीं गेहूं क्रांति हो गई है, तो गेहूं के उत्पादन में खूब बढ़ोतरी हुई, चावल में तो और ज़्यादा हो गई। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य में एक ही जैसी थी या हर फसल बढ़ गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खूब वृद्धि हुई। आप जानते हैं कि क्यों, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रकबा जो है वो कृषि क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा ज़मीन कृषि में आती है और फिर गंगा का उपजाऊ मैदान भी तो यहाँ है। आइए थोड़ा सा मैं आंकड़ों की डाटा की आंकड़ेबाजी में चलता हूँ। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की वृद्धि उल्लेखनीय रही। अब देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्या है, ये गेहूं चावल में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, लगातार वृद्धि पर वृद्धि किए जा रहे हैं। अब देखिए गेहूं में देखिए 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। आप देख रहे हैं कि गेहूं के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है, ये लगभग 26 करोड़ टन तक पहुंची जा रही है, 17-18 करोड़ टन पहुंची जा रही है, मतलब हमारे पास खाद्य काफ़ी हो गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको एक क्रियाकलाप दी गई है तो जो मैं चाहूँगा कि आप करें प्लीज़। देखिए अब थोड़ा सा लॉकडाउन में सरकार भी ढील दे रही है तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप इनके नियमों को तोड़ दें, मगर अगर थोड़ी सी भी आपको कभी इसके बाद जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएँ मौका मिले तो इसे ज़रूर कीजिए। निकट के किसी गांव में कुछ खेतों पर जाएं और किसानों द्वारा उपजाई गई खाद्य फसलों का ब्यौरा एकत्रित करें। देखिए, मैं चाहता हूँ बच्चों का आप इसे करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें आपको बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर पता चलती हैं। वैसे तो ठीक है, चलो भाई, हाँ हाँ पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब जाके देखें कि अब देखिए, चावल का उत्पादन ज़्यादा क्यों हो रहा है और गेहूँ उस तुलना में उत्पादित कम क्यों हो रही है? जरा सोचिए बच्चों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कीजिए कि चावल ज़्यादा क्यों हो रहा है और गेहूँ कम क्यों हो रही है, गेहूँ का उत्पादन कम क्यों हो रहा है। मुझे आप क्या आप सोच पा रहे हैं? सोचिए। चलिए, मैं इस पे आप पे छोड़ देता हूँ, बस एक हिंट कर देता हूँ कि चावल एक में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और मानसून के समय में उसकी खेती की जाती है। बस अब मैं इससे ज़्यादा चाहूँगा कि आप इसे खुद ही इस पर सोचें। अब देखिए, पंजाब का किसान में एक किसान है जो कि चित्र में आपको दिया भी गया, गेहूँ के खेत में सामने है, जहाँ हरित क्रांति पर आधारित है, मतलब गेहूँ काफ़ी ज़्यादा उधर उपजती भी है। तो किसानों से जब आप बातचीत करेंगे, फिर खाद्य फसल का ब्यौरा एकत्रित करेंगे, तो फिर क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में रच बस जाएंगी और फिर आपको अच्छे से समझ में भी चीज़ें आने लगेंगी। भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाए जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था में दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब मान लें कि ठीक है कि आप सब विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं और सबकी कलम ख़राब आती है, तो क्या उपाय है? तो सरकार, आप एक स्कूल प्रबंधन निकालेगा, कोई बात नहीं, हम कलम का स्टोर करके रखेंगे, बस जहां आप एग्ज़ाम देंगे दुकान के बाहर ही दुकान स्टॉक रखेंगे, आपको अगर घटेगा तो आप ले लेंगे। अब देखिए, दुकान के बाहर है तो कैसी भी परिस्थितियाँ हों, आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे सर, उधार दे दें, या फिर किन्हीं का, और आपको मित्रों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी, आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। वह स्थिति है जब उत्पादन ज़्यादा होने लगा, बहुत ज़्यादा अनाज बढ़ने लगे, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अब हमारे पास खाद्य सुरक्षा हो गई, बहुत ज़्यादा फसल हो गया। तब मान लें ठीक है, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं पड़ा, अकाल नहीं आएगा, मतलब भुखमरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने अब यहाँ पर सेव कर रखा है, बचा कर रखा है, खाद्य सुरक्षा हमारी बहुत अच्छी है, और फिर हमने ये भी देखा कि हमारा जो दूसरा सिस्टम है, बफर स्टॉक वगैरह, वो भी उपलब्ध है। तो दो यहाँ पर बताया गया कि दो हैं सरकार के, दो अंग हैं सरकार का, दो ऐसा घटक है, घटक मतलब दो पार्ट्स ऐसे हैं जो इसे भुखमरी से पूरे देश को बचा रहे हैं, एक तो बफर स्टॉक है और दूसरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए, आप अगर नाम पर जाएंगे तो नाम से ही आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इन दोनों का अर्थ क्या होगा। बफर स्टॉक मतलब क्या? बफर मतलब बहुत बड़ा स्तर, और स्टॉक मतलब जमा करना। तो बफर स्टॉक मतलब बहुत बड़े स्तर पर आप जमा करते हैं। यहाँ देखिए, भारत में अनाज की उपज को दिखाया गया है, अगर आप 2017-18 में देखें तो 60-61 की तुलना में 2016-17 में मुझे लगता है कि तकरीबन 3.5 गुना वृद्धि हो चुकी है। यानी एक व्यक्ति अगर 1 किलो अनाज उपजाता था तो आज वह 3.5 किलो अनाज उपजा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ करने के लिए दिया गया है, आरेख 4.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मैं बच्चों ये बिल्कुल आप पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पिछले में हमने काफ़ी अभ्यास किया है, और फिर ये आपके लिए भी है कि आप जरा से इसे अभ्यास करें और थोड़ा सा अपने आप को भी व्यस्त रखें और कुछ खुद भी सीखें। आइए, मैं चलता हूँ आपको लेके कि बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाली क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। अब देखिए, कृषि क्रांति आ गई, सरकार ने बहुत ज़्यादा उत्पादित कर दिया, तो अब क्या की? उसे जमा भी तो करना है। तो ठीक है भैया, बफर स्टॉक बना दिया गया कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दी गई, उसमें सरकार ने कहा कि जो अधिक अनाज होता है आप इसमें रखिए। क्योंकि देखिए सरकार तो जन लोकतंत्र है, तो सरकार को अपने राज्यों को अपनी जनता का हित तो देखना है, उसे ये तो देखना है कि मेरी जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। तो उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, बोले आप इसमें स्टॉक कर दीजिए। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऐसा होता है कि जब किसान बहुत ज़्यादा उपजा लेते हैं तो बहुत से व्यापारी होते हैं बीच में जो आ जाते हैं और उनके फसल की बहुत कम कीमत देते हैं। मतलब उत्पादन है और कितना भी लगा आपको बहुत कम 10 या 12 रुपये में लेंगे, बेचना है तो बेचिए वरना आपका, अब देखिए किसान के पास तो उत्पादन ज़्यादा हो गया तो मजबूरी में वो अपने फसल को बेचना तो चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि अगली बुआई के लिए भी उसे पैसे चाहिए और इसी पर उसने 4 महीने बिताए हैं तो उसको आय भी चाहिए, बहुत से कर्ज भी तोड़ने हैं तो वो बेचेगा। अब व्यापारी औने पौने दाम में खरीद लेंगे तो इससे क्या होगा कि उनके हाथ में उतनी पूंजी नहीं आएगी और फिर वो हतोत्साहित होंगे। तो सरकार क्या कहेगी, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत कर देगी कि नहीं नहीं इतना से कम में आप नहीं खरीद सकते। अब देखिए सरकार व्यापारियों पर जोर तो देगी नहीं, तो वो कहेगी कोई बात नहीं हम आपका खरीद लेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि गेहूँ 1800 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन कीमत है, मतलब सरकार इस रेट पर आपसे खरीद लेगी। अब सोचिए कि क्या किसान व्यापारी को 18 से कम में बेचेंगे, बिल्कुल नहीं बेचेंगे। चलिए ठीक है थोड़ा बहुत बहुत कम में बेचेंगे, बहुत एक आधे रुपए के अंतर पे, तो उससे उन्हें क्या होगा, जिससे पहले उन्हें 10 रुपये मिल रहा था अब वो व्यापारी उन्हें 17 रुपये देने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीद लेगी तो किसानों की आय बढ़ेगी, इस तरह सरकार उन्हें बचाती है। अब बफर स्टॉक बना दी गया, ठीक है भैया मान लें कि उत्तर प्रदेश में बहुत अनाज उत्पादन हुआ, बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ तो सरकार ने बफर स्टॉक कर लिया और मध्य प्रदेश में अकाल पड़ गया, वहाँ अनाज नहीं है तो सरकार क्या कहेगी, मेरे पास तो है ही, चलिए टेंशन मत लीजिए, वो पहले से उसे लाके दे देगी, है ना। और जिस कीमत पर वो निकालेगी, बहुत कम कीमत पर बेचने लगती फिर मार्केट में या वहाँ पे, उसे हम निर्गत कीमत कहते हैं, है ना। प्यारे बच्चों एक चीज़ आप याद रखें जो आपको अगर अर्थव्यवस्था समझने में भी मदद करेगा, और अभी तो करेगा ही करेगा, कि सरकारें दुकानदार नहीं होती हैं, वो बनिया नहीं होती हैं, वो ये चीज़ें नहीं देख रही मुझे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। अब फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सरकार क्या कर रही है, ठीक है भैया आ जाओ कोई बात नहीं, चलो हम अब इतनी चीज़ें हैं तो ठीक है, जहाँ अकाल है वहाँ पहुँच रहा है। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे, आपने पढ़ा ना कि वो खाद्य की सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल असुरक्षित है, तो उनको क्या किया जाए, अकाल होने का वेट किया जाए, बिल्कुल नहीं। आग लगने पर कुआं खोदने से अच्छा है कि हम पहले ही कुआं खोद के रेडी रहें, जब आग लगेगी तो पानी देंगे। अब सरकार क्या करेगी कि ठीक है भैया हम घर घर अगर फ्री में पहुँचाने लगे सरकार तो वो भी गलत बात है, लोग मुफ्तखोर हो जाएंगे, मेहनत नहीं करना चाहेंगे, ठीक है सरकार दे ही रही तो क्या ज़रूरत है। तो सरकार क्या करती है कि PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो एक दुकान खोल देती है कि देखिए ये मेरा दुकान है सार्वजनिक, वहाँ पे किसी को रख देती है और वो पीला कार्ड घोषित कर देती है, कार्ड बांट देती है। कार्ड मतलब इस तरह से आप स्कूल में जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं तो बताया जाता है कि हाँ आप अंदर आ सकते हैं, फिर उसमें आपका वर्ग लिखा रहता है कि आप इस वर्ग में जाएंगे, रोल नंबर तय बाकायदा होते हैं ताकि क्लास में आपका क्या स्थान है वो आपको पता चल जाए। तो इस तरह से सरकार भी कोशिश करती है, सरकार जो खाद्य और सुरक्षा की दृष्टि से लोग हैं उन्हें कार्ड दे देती है। अब क्या चाहिए आपको, देखिए आप खाद दे दी तो कैसे, तो फिर 35 किलोग्राम अनाज देगी, जो चीज़ें कम खपत जैसे 5 किलोग्राम चीनी देगी आपको, 5 किलोग्राम मिट्टी का तेल देगी और क्या उचित दर पर, मतलब जो बाज़ार का रेट है उससे काफ़ी नीचे। और देखिए मात्रा कम सरकार आपको इसलिए देगी, ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ से उठा लें, अब 5 किलोग्राम ही लिमिट है, क्योंकि अगर मान लें कम रेट पर है तो हो सकता है आप 50 किलो खरीद लें और बाजार में जाके बेच दें, तब तो सरकार का घाटा होगा। क्योंकि देखिए जो पैसे आप नहीं देंगे वो तो सरकार देगी आपके दम। एक चीनी उत्पादक फैक्ट्री है वो तो अपना रेट लेगी ही लेगी, आप आधा दे रहे हैं और आधा आपकी बिहाफ पर सरकार दे रही है ना बच्चों। आइए, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। हमने पीछे पढ़ा था कि एक रेखा होती है निर्धनता रेखा, मतलब इतना से ज़्यादा आप कमाते हैं, इतना खाते हैं तो फिर आप निर्धन नहीं हैं। तो कुछ लोग हैं जो निर्धनों में भी बहुत गरीब हैं, जैसे मान लें कि ठीक है अनुसूचित जनजाति है, सारे लोग गरीब हैं, उसमें से कोई विधवा है तो उसकी स्थिति और भी ख़राब है, तो उसको हम अंत्योदय कहते हैं, मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कार्ड रखा गया है, अंत्योदय कार्ड रखा गया है कि ठीक आपको ज़्यादा मिलेगा। जो और निर्धनता से उन्हें BPL कहा जाता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर और जो अच्छे आमदनी वाले लोग हैं उन्हें APL कार्ड दे दिया जाता है। आइए बच्चों, कुछ क्रियाएं आपको सुझाई गई हैं, आप इसे देखें। और मुझे लगता है कि बच्चों के अब मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये चीज़ें आप अगर पिछली कई बार से करते आ रहे हैं तो आप इसे कर लेंगे, नो डाउट कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर चर्चा करना कुछ उचित मालूम नहीं पड़ता है, ये आप अपनी तरफ से कर लें और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे। आप देख भी रहे हैं कि नीचे में एक तस्वीर दी गई है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और लोग अपने अपने राशन को ले रहे हैं। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबों के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही था लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई और काम के बदले अनाज FFW में 1977-78 में प्रारंभ। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देते हैं। आपने देखा ना कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ ये नहीं है कि 2 जून की रोटी हो गई, गुणवत्तापूर्ण भी होना चाहिए। सरकारें क्या करें, जब 1940 का बंगाल का काल पड़ा तो थोड़ा बहुत अंग्रेज़ों ने ध्यान दिया, लेकिन अब उनका देश तो था नहीं, भारत का देश था, तो भारत ने बाद में इस पर बहुत ध्यान दिया। हमारे जो भी यहाँ पर नागरिक हैं भारत के, अगर वो पोषित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, भुखमरी से नहीं मरेंगे, तो हमारा जो रिसोर्सेज है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स हम पढ़ रहे हैं पिछले में, वो ज़्यादा बचा रहेगा। फिर हम उनको एजुकेशन दे पाएंगे, फिर हम उनको हेल्थ दे पाएंगे, और जब इन दोनों सेक्टर्स पे हम देंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हमने कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे एक तो PDS है, इसे और मजबूत कर दिया गया। फिर बच्चों के साथ बच्चे से विकास कैसे किया जाए, इसके लिए भी कुछ योजनाएँ बनाई गई। काम के बदले अनाज की काम कीजिए और अनाज ले जाइए, ये भी था। कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चले, जिससे कि अब देखिए दो तरफा हुआ। एक तो सरकार ने अनाज सस्ता कर दिया, उससे गरीबों को बहुत फायदा हुआ, अनाज की जो अधिक कीमत देनी पड़ती थी वो नहीं देना पड़ा, और फिर सरकार ने रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा दिए। तो एक पंथ दो काज वाली स्थिति हो गई, रोजगार भी मिल गया आपको और आपके लिए खाद्यान्न भी सस्ता है, तो बचत बढ़ने लगी और धीरे धीरे लोग गरीबी रेखा से बाहर आने लगे। देखिए बच्चों, यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है जो आपको करना चाहिए। सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्य पर आधारित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एकत्र करें। इसके लिए आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी या फिर इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। तो कौन कौन से, जैसे आप देख भी रहे हैं कि दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल योजनाएं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो ये सब आप अपने आराम से उधर देख कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि करना ही चाहिए, इट कांट बी अवॉइडेबल, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए फिर लिखा है, अपने शिक्षकों के साथ चर्चा करें। तो अगर आपके शिक्षक, जब आपके विद्यालय खुलें, तो कर सकते हैं कि सर क्या है, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही हुई हैं या नहीं हुई है। करना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षक देखिए बेहतर ज्ञान में है, तो उनसे बात करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी, है ना। प्यारे बच्चों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट ने कहा था कि मैं मूर्खों का मालिक बनने से अच्छा है कि बुद्धिमान लोगों का नौकर बनूं। तो आप भी इसको फॉलो करें कि शिक्षक से थोड़ी बहुत चर्चा करें। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। फिर इसमें हमने बफर स्टॉक को देखा कि सरकारें ज़्यादा उपज होने लगी तो उसे जमा कर दिया गया। अब जमा कर दिया गया तो ठीक है भैया, अब जमा करके क्या करोगे? तो जमा करके हम बांटेंगे गरीबों में। कैसे बांटोगे? तो बफर स्टॉक बना दिया गया, इसमें जमा करेंगे। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली बना दी गई कि चलिए ठीक है, अब तो जो अकाल हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे भी लोग हैं जिन अकाल में तो नहीं है लेकिन स्थिति बहुत बुरी है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? तो दुकान खोल दिया गया है, ठीक है। तो गेहूँ चावल देंगे तो गेहूँ चावल ही खा के नहीं रहेंगे, तो दूसरी चीज़ें भी देंगे। तो दूसरी चीज़ों में क्या देंगे आप? दाल देंगे, मिट्टी का तेल देंगे, चीनी देंगे। तो ठीक है भैया, चीनी दे देंगे, लेकिन अगर आप यही देने लगेंगे तो आप कंगाल हो जाएंगे। तो फिर सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम लोगों को रोज़गार भी देते हैं, स्वरोजगार देंगे, बहुत सी कार्यक्रम योजनाएं चलाएंगे, काम देंगे, तो उनके हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मेहनत में भी रहेगी और कम दाम में मिलेगा तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी और धीरे धीरे वो गरीबी के बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की और काफ़ी मिलकर एक अच्छी चर्चा भी की, ग्राफ बार भी देखे, हरित क्रांति के बारे में भी पढ़ा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय थोड़ा बहुत अब समझ में आने लगा होगा और थोड़ा बहुत धैर्य रखने के बाद हम इस अध्याय को पूरी तरह समझ लेंगे। मैं आपका दोस्त सावन विदा लेता हूँ कि मैं आपसे फिर अगले ऑडियो में मिलूँगा इसके आखिरी अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। टाटा।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।